تو آپ کی قلت مقدر نہیں ہوتی، خواہوں کو حقوں کو رکنی نے کہا بس ہے کون پا اور سی، پا مانے پالن پوشن کرنے والا، پا مانے رکشا کرنے والا، کیونکہ رکشا پتی کوئی ہمارا رکشا کر سکتا ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پتی سے پہلے بھائی پتی مر جاتے ہیں تو اپنی اسی کی کیا سیوا کریں گے؟ ماتا کے گرم میں پتی نے اس پتی نے نہیں سیوا نہیں کی، پرم پتی کرشن نے سیوا کی رکشا کی، کیونکہ جگت میں جو سیوا کرنے والا ہے، پالن پوشن کرنے والا ہے، جو رکشا کرنے والا ہے، جو مٹی سے بھی رکشا کر سکتا ہے وہ کرشن ہے، اور کرشن کا نام ہے جگت کے پتی دیو نہیں۔ اسے سنسار میں جب کوئی پتی ہے پرم پتی ہے تو وہ کون ہے؟ رکشا کے پانچ پتی ہیں، تو کرشن کو ہی اپنا پتی مانتے ہیں۔ کنتی جی، کنتی جی کرشن کے بوا لگتے بوا لگتے ہیں، تو بوا جی ہو کر کے کرشن کو ہی پرم پتی مانتی تھی۔ مندودری، تارا، اہلیا، کنتی، دروپدی، یہ پنچ کنیا ہیں، ان کے اپنے پتی ہونے پر بھی کرشن کو ہی پرم پتی مانتی تھی، اس لیے ان کو کنیا کہا گیا، پرم پوتر۔ اس لیے سبھی سنسار میں ویوہارک روپ میں شادی ہونے پر بھی چاہے وہ پروش ہو یا کپل ہو، کرشن کو ہی پرم پتی سمجھنا چاہیے، وہی پرم پتی ہے، وہی ہماری رکشا کر سکتے ہیں اور رکشا کرتے ہیں۔ جب ان کا کوئی شرن گرہن کر لے تو وہ پتی کیا کرتے کہتے ہیں، سرو دھرمان پریشمان ایکم شرنم پرجا انتوام سرو پاپ ہو مکت۔ دروپدی کی کیسے سیوا کی، ان کے کیسے رکشا کی؟ پانچوں پانڈو لوگ نہیں کر سکے، بھیشم پتاما جی نہیں رکشا کر سکے، دروڑ نہیں کر سکے، یدھشٹھر بھیم ارجن نکل سہدے کوئی بھی نہیں کر سکا، دھریتراشٹر بھی نہیں کر سکا، کنتی اور مادری بھی نہیں کر سکی، کوئی چیز نہیں کر سکا، کون سی چیز ہمارے رکشا کے جنم جنم کے ہمارے وہی پتی ہیں، پرم پتی ہیں، سروتھ وہ وہی ہیں۔ سے دھیان کر کے جو کچھ کا بھجن کرے گا وہ مایا سے سر جائے گا اور باقی لوگ سر جائیں گے۔ بھاگوت کا یہی ادیشیہ ہے، جو سننے آ رہے ہیں کرشن کو ہی پرم پتی سمجھے، ان کا پتی بکتے نشٹ نہیں ہوگا، وہ کماری کی کماری ہے۔ ان کی تو کرشن کی بات تو چھوڑ دو، ویاس جی کی میا کیا نام تھا، سب سے بچے پراسر جی سے ویاس جی پیدا ہوئے کرتب کی فکر سے، کنتو وہ کاری کی کاری بنی رہی۔ کنتی جی کو سوچے سے پتر ہوا، کنتی سے پتر دے کرن، پھر تو پھر بھی کاری رہ گئی، کرشن کو پتی مان کر ماننے سے کوئی کاری پر نش ہوگا؟ ہمارے پرانوں کے ہیں، ہماری آتما کے ہیں، ہمارے سروت کے ہیں، ایسا سمجھ کر کے کرشن کو ہی پڑے گا، اس کا بھجن کیا جائے۔ بھجن کرنا کٹھن نہیں ہے، ہری کرشن ہری کرشن کرشن ہری 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 رام کرشن، آپ ہی ہمارے سروس میں، ہمارے جیون کے من کے پران کے سروس آپ ہی، یہی بھاگوت کا۔ آج ہم لوگ اس پر سماپت کرتے ہیں، کل ہم لوگ بھاگوت دوادش اسکند سماپت کریں گے، آج دسواں اسکند ہوگا اور کل اکادش اور دوادش، یہ دو ہوں گے، اور اس کے بعد میں کل ہی بھاگوت کو ہم لوگ سمپورن روپ سے سماپت کر لیں گے، اور پرسوں سویرے 8-9 بجے سے جیسے آتے ہیں سبھی لوگ آئیں گے، بھاگوت کا ہم لوگ پوجن کریں گے اور پورنہتی کے لیے یج کریں گے۔ جو لوگوں نے سنا ہے ان کو کرشن میں پریم ہو، بھگوان کی کتھاؤں میں آدر ہو، ان کا جنم سفل ہو جائے، اس لیے کروناہتی میں ہم لوگ کروناہتی میں یج کر کے آپ سے ہمارا بھاگوت آج بچن شرون ہمارا ساتھ، اور اس کے بعد میں سبھی لوگ ان کا جیسا ہوگا پرساد گرہن کریں گے، اور اس کے بعد پرسوں سب شام کو ہم لوگ بھی ورنداون متھرا میں یاترا کریں گے، اور پھر جب بھگوان بلائیں گے تب ہم لوگ آئیں گے، اور ایسے ہی کتھا ہوگی، اور آپ لوگ ادھک سے ادھک سنکھا میں آئیں گے، اور سبھی لوگ سب کتھا ہوگی، کہتے ہیں دشمنی نے करने से नहीं होता, अपने मन से लाग चर्चा करो। इसलिए और थोड़े दिन में अनायास ही कृष्ण का भजन करती नाम नहीं छोड़ना है। ये कोई मंत्र लो ना लो, किंतु हरि नाम, ये जो कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कोई भी जैसा भी नहीं हो तो अभी स्नान करने के बाद फिर 10 बार कर लो, इसलिए भजन हो जाएगा। कोटि कोटि तपस्या, कोटि कोटि आराधना, कोटि कोटि यज्ञ, कोटि कोटि व्रत, कोटि कोटि तीर्थ में स्नान करने से भी एक नाम के बराबर नहीं है। आप लोग जो आए हैं कृष्ण को प्रणाम करेंगे, हरि नाम करेंगे, उनकी कथाएं बहुत से लोगों को भागवत की ग्रंथ दिया गया है, हमारी बेटी ने सबको उपहार के रूप में दिया है, उसका आप लोग आदर के साथ बात करेंगे, उसमें कृष्ण में चित्त लगेगा और अंत में सब लोग सहज करोड़ रूप में बहुत आगे होगा। आज निवेदन करके अपना वक्त समाप्त करता हूँ और एक हफ्ते आप लोगों ने जो कष्ट उठाया, यद्यपि हमको धन्यवाद नहीं देना चाहिए कभी उत्साह बढ़ाने के लिए देते हैं, क्योंकि हम तो आपको भागवत सुनने का अपने आप ले जाए, आप लोग नहीं समझने पर भी जरूर इसका फल मिलेगा ही। एक बच्चा आपकी महिमा नहीं जानता तो इसने अपने हाथ डालता है तो वो जला देती है, एक आदमी सीख जाए भरे समुद्र में तो डूबेगा ही, तो भगवान की कथा अपना फल क्यों नहीं दे। वो आदमी चाहे न चाहे, यदि गया है उसमें कुछ बैठा है कुछ कानों में गया है, जरूर वो फल अवश्य। भागवत सुनने का फल क्या है, श्रीमद् भागवत ने खुद ही इसको बतलाया, जस्या वही यमाना यंग कृष्ण परम पुरुष भक्ति तत्काल व्यक्ति ने सुखदेव जो कोई आदमी के श्रद्धापूर्वक सुनेगा तो मोह है सब उसका संसार दूर हो जाएगा, जन्म मरण को भी पार कर कर राधा कृष्ण की नित्य सेवा को गुरु बैठ हमने अवश्य पाया। ಸಂಪಾಯದ ಕತೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಆರಂಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗಿ ಯದಿ ಕೋಯಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿ ಕೃತೆ ಕಿಂಬಾ ಪರೈರೀಶ್ವರ ಸದ್ಯವರುದ್ಧತೆ ಸೂತ್ರಿ ಸುಸ್ತುಲಿ ತಕ್ಷಣ ಯದಿ ಕೋಯಿ ಸುಸ್ತುಸು ಹೋಗತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಇಷ್ಟ ಶ್ರವಣ ಕರೆಯದ तो अवश्य तत्क्षण भगवान जो कृष्ण हैं वो उसके प्रेम से बची ठीक हो जाते हैं, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जब भगवान ही अवरुद्ध हो गए तब तो बाकी क्या रहा, यहाँ तक कि श्रीमद्भागवतम पुराण मलम जब वैष्णवा नाम प्रियम जैसे ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम ಸತ್ಸುಣವನ್ ಸುಪಠಂ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ಯಂತರ ಸಂಸಾರ ಯತ್ತಂ ವಿಮುಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಸ್ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಗಮನಂ ಯೇ ತೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಾ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಕಿ ವೇದ ಕಿ ಸ್ತುತಿಯಾಂ ಬಡೇ ಬಡೇ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಲೋಗ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಮೇ 60,000 ಋಷಿ ಲೋಗ कृष्ण की इन लीलाओं को सुनकर उनको लोभ हुआ कि हम गोपियों जैसे कृष्ण की सेवा कर सकें, अन्यथा ऐसे समझ जनकपुर की जितनी स्त्रियाँ थीं, महिलाएं थीं, लड़कियाँ थीं, किशोरियाँ थीं, उन्होंने देखा राम के साथ में इनकी शादी हो रही है, उनको भी ऐसा ही पर यही पर भला रामचंद्र जी श्रवण करके उसके वर को पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जैसे किस जन्म में नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, कृष्ण लीला में तुम लोग गोपी बन करके आएगी और फिर तुम्हारी इच्छा वही ये गोपियाँ थी जो कत्यायनी का वर्ष किया। इस तरह हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत का फल ऐसा है कि गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की जुगल की सेवा मिलती प्राप्त होती है और संसार को तो ऐसे चुटकी बजाते हुए चलता है। यदि अजामिल ने मरते समय में नारायण का नाम उसने बेटे के लिए कहा और उसको मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम हो गई, तो यदि कोई कृष्ण की इन लीला क्षेत्रों को दामोदर बंधन लीला रास लीला भ्रमर गीता और जो वेणु गीत है और सबको जो श्रवण करेगा तो क्यों नहीं भव सागर को पा कर अवश्य पाएगा, ऐसा विश्वास आप लोग अवश्य रखें। किंतु एक बात ये जथांग माम प्रकट है, जैसी जिसकी श्रद्धा से सुना उस पर तौला जाएगा। ये भागवत तौलेंगे कि हमारी बात को कितना इन्होंने श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक सुना है तो उसके अनुसार में कम बेसी कुछ फल मिलेगा, सबको एक समान नहीं मिलेगा। धुंधुकारी की बात आपने सुनी होगी, पहले दिन धुंधुकारी ने भागवत श्रवण किया, इतना पापी दुर्धर्ष अत्याचारी, 7 दिन तक भागवत सुना और 7 गांठ 5 के टूट गए और वो आकाश से विमान आया सोने का वैकुंठ से और उसको चढ़ा करके ले गए। धुंधुकारी को जो सुना रहे थे गुरु जी उनका उनका बड़ा भैया वो कर उन्होंने जब भगवान के दूतों से कहा कि आप इसको तो ले जा रहे हैं, सब लोगों ने सुना, इनको क्यों नहीं ले जा रहे, इन्होंने मन से नहीं सुना। जिस प्रकार से एकाग्रगत चित्त से धुंधुकारी ने सुना पूरी भागवत, इन लोगों ने नहीं सुना, कोई आलस्य किया, कोई पीछे से आया, कुछ आगे चला गया, कोई मित्र में आ रहा था, कोई इधर ऐसे कर रहा, कोई बात कर रहा, कोई दूसरी चिंता कर रहा, इसलिए इनके लिए विमान। तो इसी तरह से आप लोगों में से यदि उस प्रकार का होगा तो उनके लिए तो विमान नहीं आएगा, बाकी विमान आ जाएगा। दूसरी बात एक और, हम लोग भागवत पाठ का फल वैकुंठ जाना नहीं चाहते, विमान आएगा तो हम उसको लौटा दें, भाई तुम जाओ हमारी जरूरत नहीं। भक्ति देवी स्वयं और उसके 2 बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, उन्होंने भागवत सुना, नारद जी ने उनको सुनाया, जब सुनाया उन्हें शरद कुमार जी ने सुनाया और सुनते ही ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे उठ नहीं सकते थे किशोर बन गए और भक्ति जब भी परम उल्लासमयी बन गए और वहां पर जितने थे वैसे
गोकर्ण ने पीछे से जब भागवत सुनाई, सब लोग बड़े ध्यान से सुने और सबके लिए करोड़ों की माने आए, करोड़ों की माने कोई बाकी नहीं रहा। तो जो श्रद्धा में जिनकी कमी हो गई तो गड़बड़ी हो, वो भागवत का दोष नहीं, हमारा दोष। अब हम विचार करते हैं, यदि सब लोगों की ऐसी गति हुई, धुंधकारी की भी गति हो गई, वैकुंठ हो गया, और जामिल भगवान का नाम सुन करके ऐसा चला गया है, बोलो वहाँ पर गए, और सब लोगों की ऐसी सुंदर गई, भगवान तत्क्षणात उसके हृदय में आ जाते हैं, शोक मोह भय दूर सब हो जाता है, तो अब परीक्षित की गति क्या है? भागवत सुना उन्होंने, और उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी जी भागवत सुनाकर आप कहेंगे ब्रह्म स्थिति में तुम स्थित, सांप तुमको स्पर्श नहीं करते, और वे उत्तर दिशा की तरफ में। परीक्षित महाराज जी सोचा जी अब तो सांप आने वाला होगा, जरूर आएगा, इससे पहले से उन्होंने भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहा, शरीर से निकाल लिया, यहाँ यहाँ से निकाल करके फिर अपने हृदय में भगवान में अपने चित्त को लगाने जा रहे थे, इतने में कुछ तरह मैया आई, बेटा तुमने भागवत सुना, हमने भी सुना, हमारी समझ में नहीं आई, बड़े संतोष की बात है, तुम संक्षेप में मेरे लिए हमको कुछ बतलाओ, जैसे क्या करना चाहिए, इसमें से चार वस्तु बताओ, मैया एक बात बतलाऊँ, सार लज्जा मत करो और हमारे साथ में कपटता और कुछ मत करो, एक बात मैं तुमको बतला रहा हूँ, देखो कृष्ण तुम्हारे क्या लगते हैं, इस तरह से ससुर से भी पाप लगे, उत्तरा मैया, उत्तरा जो है परीक्षित की मैया है, किंतु अभिमन्यु की पत्नी है और अर्जुन की बहू है, और कृष्ण और अर्जुन को मान लो भाई, तो एक तरह से वो भी ससुर हुए, कृष्ण भी, कृष्ण को ससुर मत मानना, उनको अपना परम प्रियतम, अपना प्राण बल्लभ मानना, गोपियां जैसे मानती, वहां पर दुनियादारी का नाता नहीं, वहां पर वही नाता है। कुंती मैया कृष्ण की बुआ है, किंतु अपने कृष्ण में वही भावना रखते हैं हमारे प्राण, जैसी गोपियों इससे बढ़ करके यदि भागवत सुन करके और कृष्ण के प्रति यह संबंध किसी को हो गया, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सभी शक्ति से आए हैं और आत्मा स्त्रीलिंग है, इन सभी शक्ति हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति यदि यह भावना आ जाए, संबंध आ जाए, कृष्ण हमारे साथ किए हैं, तो उसका भागवत सुनना पूरा हो गया और उसको कभी माया स्पर्श नहीं कर सकता। भागवत में इन्होंने सब सुना, परीक्षित महाराज जी उनको सांप काट देगा और उनको शोक मोह हो जाएगा, ये तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, किंतु ऐसा वर्णन किया गया। अब इसमें सामंजस्य करना, यही संत लोग करते हैं, जो भागवत के रसिक विद्वान हैं ये लोग करते हैं, साधारण ये जो कथावाचक हैं, जो पैसे के लिए करते हैं, रोज चरणम जो प्रणामी गिन लेते हैं, देखते हैं कि आज इतना हुआ कल इतना हुआ, वो लोग ये सब चीज़ें नहीं बतलाएंगे। जो परम दयालु हैं, जो हमें देख करके जिनको दयालु बढ़ती है, ये संसार में सीखता है, वो लोग इन चीज़ों को बतलाएंगे। भला श्रीमद भागवत सुन करके शोक मोह भय दूर हो जाता है, वैकुंठ की गति से भी ऊपर वो लोग वृंदावन की गति निकली है, और परीक्षित महाराज जी मर गए और सांप काट दिया, ये तो उनकी बात मालूम पड़ती है, तो इसमें कुछ जरूर सीखी हुई बात है, क्या चिटी हुई बात है, चिटी हुई ये बात है, परीक्षित महाराज जी ने अपनी उत्तरा मैया को ये सब बातें बतला करके, जो उनको बतला रहे हैं मैया को, तो ये वो बात करेंगे कि नहीं, खोज जरूर करेंगे, मैया को जो करेंगे तुम ये करो, अपने नहीं करेंगे तो उनको बतला कैसे रहे हैं, इसलिए जरूर वो भाव किए होंगे, मैं कृष्ण की यथमा बन जाऊँ हमारे प्राण की, और फिर जबकि मरते समय में ये भाव आ रहा है कृष्ण के प्रति, और उनका इस प्रकार से स्मरण करके चित्त को उसमें लगा दिया, फिर उनकी माया कैसे स्पर्श करेगी, मृत्यु कैसे स्पर्श करेगी, ये कभी होना ही नहीं सकता, तो यहाँ पर कुछ माया का खेल है प्रपंच, वो ऊपर से ऐसा दिखला रहे हैं, भीतर से वैसी बात नहीं है। जब परीक्षित महाराज जी ने ध्यान लगाया, अपने शरीर से आत्मा को निकाल दिया और निकाल करके यहाँ ले आए, फिर सहस्त्र आर जिसको कहते हैं हृदय में उसे खाते, अब शरीर से उनका कोई भी संबंध नहीं रख दिया और वो लोग वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में कृष्ण के समीप अबू चले गए, राधा कृष्ण के यहाँ। शरीर में जीव हो गया, शरीर में कुछ नहीं, वैसे ही ध्यानस्थ बैठे हुए हैं कि इस तरह से लोग समझते हैं कि अभी जीवित निकाल दिया समाधि, और इसके बाद क्या होता है कि उसी समय में काश्यप नाम का एक ब्राह्मण, धन्वंतरी जिसको कहते हैं, धन्वंतरी वो नहीं बल्कि ये काश्यप एक ब्राह्मण जो सरसों का मंत्र जानते हैं, बड़े भारी तपस्वी, उन्होंने सुना जब परीक्षित महाराज जी को सांप काटेगा और मैं उन्हें बचा दूंगा, जड़ी बोलियों से भरे हुए अपने थैले को ले लिया और थोड़ी देर में बाद में दूरी में जंगल में एक बड़ा मोटा काला एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? परीक्षित की सभा में जा रहे, इसलिए जा रहे हैं परीक्षित को सांप काटेगा मैं उसे बचा लूंगा, आप नहीं बचा सकते, मैं जरूर बचा लूंगा, मैं कहता हूँ आप नहीं बचाएंगे आप लौट जाइए, मुझे नहीं लौटूंगा जरूर बचा लूंगा। अच्छा तो यही तो परीक्षा हुई, मैं वही नाग हूँ ब्राह्मण का, मैंने किस तरह से काला रूप बनाया है, मैं इस बरगद के पेड़ को जो पूरा हरा भरा है उस पर चिड़िया भी है, सब कुछ वहाँ पर है, फल लगे हुए हैं, पत्ते हैं, मैं इसको डसता हूँ अभी जल करके खाक हो जाएगा जड़ समय और तुम इसको जिंदा कर दो समय समय, ठीक है। बस उसने तक्षक का वेश सांप का बनाया काला नाग, बड़े क्रोधित होकर के उसको काट, यही काटा एक क्षण के अंदर में जड़ से लेकर के ऊपर सारा सूख करके जल गया राख उसने, और इनके तरफ में देखने लगा कि आप अब तुम इसको बचाओ। उन्होंने अपने थोड़ी जल से कुछ औषधियां निकाली और उसको बनाया और मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके बस उसके ऊपर में जहां वो जड़ थी जली हुई उसके ऊपर में देखते देखते ही उसमें सुंदर अंकुर हुए, और साथ ही साथ मिनटों में वो बरगद का पूरा पेड़ हो गया हरा भरा हो गया, उसमें जो चिड़िया मर गई थी चिड़िया भी उसमें आकर से चहचहाने लगी, अब तो हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर, प्रभु आप मत जाइए, इसलिए जा रहे हैं पैसे तो मिलेंगे रुपये मिलेंगे, पर सोने के थाल में भर करके अस्तर किया पूरी हीरे जवाहरात भर सजे दिए, नहीं भैया हमारा तो कर्म है जाने का, एक और थाल ला दिया, जो जो वो करता गया और लाता गया और देख करके इनके मुख से पानी भराया, कहीं अच्छे तो बात है ठीक है मैं लौट जाता हूँ, बस सब थोड़ी घंटा में भर लिया लौट, किंतु उसी समय से सांपों का मंत्र इत्यादि जो हमारी वैदिक परंपरा की थी इस लोभ के कारण में उसका सारा नष्ट हो गया, फिर उससे काम भी नहीं आया और उसका कोई भी चीज ऐसा नहीं रहा जो उसका हैं अभी भी मंत्र जानने वाले, किंतु ऐसे नहीं जैसा किया। अब वो सांप तक्षक का रूप बना करके पतला छोटा सा कीड़ा बन करके प्रतीक्षा करने लगा, वहाँ पर मालिन फूल का हार ले आई, बस छठ उसमें घुस गया और वहाँ पर जाकर के परीक्षित महाराज जी को किसी ने वो उपहार के रूप में उनको फूल की माला चढ़ाई, चढ़ाते ही उसी में से निकला और उनके सूखे हुए शरीर को निजी शरीर को एक क्षण में ही वो जल गया, किंतु महाराज जी ने पहले ही योग समाधि के द्वारा अपनी आत्मा को हटा लिया, उनके उस शरीर को जिसने कृष्ण ने रक्षा की चक्र सुदर्शन से और गदा से उनकी मैया की पेट में, भला उसको ये तक्षक कैसे जलाएगा, योग माया ने उस शरीर को अंतर ध्यान कर दिया और माया का शरीर बना करके मिट्टी का शरीर वहाँ पर रख दिया जिसको तक्षक उनके उस शरीर को भी नहीं धर सका। कृष्ण की गोदी में जाकर के अपराकृत शरीर जाएगा, जड़ माया का शरीर कृष्ण की गोदी में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। इसलिए परीक्षित महाराज जी का शरीर भी माई मट्टी का नहीं था, ये समझो। अर्जुन का शरीर, प्रहलाद महाराज जी का शरीर, नाथ जी का शरीर, गोपियों का शरीर, ये माइक नहीं होता, वो तो उस जगत से उतरता है हमारे पास। मीराबाई को जो भी बीज दिया गया नहीं मरी तो क्या समझो, कृष्ण के शरीर में ही वो द्वारका में जाकर उनकी मूर्ति में मिल गई, वो मरी नहीं। परीक्षित महाराज जी कहते नहीं मर सकते, इसलिए इनको गोलोक वृंदावन में इनकी उत्तम गति हुई जो साधारण भक्तों को नहीं होती है, बड़े विशेष भक्तों को होती है। कृष्ण के परिकरों की जो गति है उनकी, इसलिए ऐसा मत समझे कि उनको सांप काट दिया। आपने ये भी सुना कि कृष्ण अपने अंतिम समय में महाभारत के युद्ध में सब असुरों का विनाश किया। जो लोग इस शरीर को मैं मान करके स्त्री पुरुष और धन संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, क्षत्रिय वेश में आए थे, किंतु थे असुर। दुर्योधन का पक्ष लिया या पांडवों का भी पक्ष लिया, किंतु किसी जड़ी से वो सब मरे। किंतु कृष्ण का दर्शन करके कोई भी जगत में नहीं रहा, वो सब लोग वैकुंठ की प्राप्ति, उनको मुक्ति मिली। द्वारका में आकर उन्होंने चिंता किया, जगत का भूभार हरण करने के लिए और प्रेम दान करने के लिए आया था। प्रेम का रसस्वादन ब्रज में मैंने किए और मैं महाभारत के युद्ध में असुरों दानवों को मार करके भार हरण किया। अब रह गया हमारा जदुकुल। जदुकुल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने को मेरे समान समझते हैं और ये जगत में भार बने हुए हैं, इन लोगों का भी विनाश करना चाहिए। उस समय में जदुकुल में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग जो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनका शरीर चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, और दूसरे वैसे हैं जो कि भक्त नहीं हैं, पुरुष सभा। और भी ऐसे लोग हैं जो कि उनके अंश से आए हैं, भगवान के कुल में हैं, किंतु भक्त नहीं हैं, समझते कि मैं भी कृष्ण हूँ, कृष्ण के समान हूँ, और रोग गांठते हैं। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, ये बड़े दूर भक्त हैं, इसलिए इनको भी जगत से हटा करके सब पूर्ण शांति होकर के बाहर हटा करके जाऊंगा। इसलिए कांटे के द्वारा कांटा निकलता है और फिर जब कांटा निकल जाता है कांटे को फेंक देते हैं। तो अपने कुल में जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ से हटाना है, नहीं तो जगत के लिए भार हो जाए। इसलिए वहाँ पर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे कुछ ऋषि लोग थे जिसमें देवल, असि, दुर्वासा जी और सब ऋषि, नारद सब वहाँ पर इकट्ठे थे। वो लोग कुछ छत्र में थे, अतः भगवत कथाएं हो रही थी। इतने में सांब और कृष्ण के पुत्र कुछ अयोध्यवंशियों को साथ लिए हुए सांब को लड़की सजा दिया। सांब देखने में बड़ा सुंदर खूबसूरत 12-13 वर्ष का लड़का था, बहुत खूबसूरत। उसको लड़की सजा दिया, उसके पेट को ऊंचा बना दिया और सिंदूर लगा लिया, उसको पैजेब और मन एकदम छोरी सजा दिया। उस ऋषियों के पास में गए, बोले महात्मन आप लोग तो सर्वस्व जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, आगे पीछे सब कुछ जो होने वाला है आप जानते हैं। ये लड़की है, इसकी अभी शादी हुई, बड़ी लजालू है, बड़ी लजालू, इसे खुश नहीं पूछना चाहती। इसकी इच्छा है कि हम को बतला दिया जाए कि हमारे बेटे बेटा बेट है या बेटी हमारे बेटे। तो आप लोग तो सब अंतर्ज्ञानी हैं, आप बतला दीजिए। जैसे आजकल करके लड़के जो धार्मिक नहीं होते, भक्ति कसते हैं, साधुओं को चिढ़ाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं, वो समझते कि ये सब बेकार का है, समय नष्ट बर्बाद करना है, क्रिकेट का खेल देखना, उसमें बम तोड़ना, ये ठीक है। लड़कियों को स्कूल कॉलेज से जब छुट्टी होती है तो उनको छेड़खानी खाना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मदिरा पान करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। माता पिता का अपमान करना, गुरुजनों का अपमान करना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब शास्त्र में ये सब लिखा गया, ये सब बातें। अरे मौज कर लो बस, दुनिया में क्या है, रिडम किस्वाद हितम प्रदेश। ई ड्रिंक एंड पी मेरी, खाओ पियो मौज करो, ऋण करके भी घी खाओ, मर जाने के बाद कौन सी साथ देने के लिए ऋण आता है। बस यही जगत सत्य है, इसके बाद में जगत सत्य नहीं है। किंतु नहीं जानते कि माया पीस करके सत्तु बना देगी, सुख समेत एकदम निकाल देगी, ये नहीं जानते। इसलिए वो लोग भी साधुओं को चिढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। कल आवा आरंभ होने वाला था, कृष्ण के महाभारत युद्ध के बाद ही में ये कली आने लग गया। कृष्ण के जाते ही कली एकदम पहुंच गया था, इसलिए कली प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए ये ऐसी बात थी। उन लोगों ने ऋषियों से पूछा, ऋषि लोग चुप क्या, किंतु उसके अंदर में बैठे थे दुर्वासा जी। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, कुछ नहीं बोले। चौथा बार कहा, तब बेटा इधर आओ, सर मैं बतला देता हूँ। ये बेटी जो है ना, ये बेटा इसको नहीं होगा और बेटी भी नहीं होगी, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा और ये मूसल जदुवंश का पूरा का ध्वंस कर देगा। और ये कहकर चुप हो गए। अब तो वो लोग डर गए और वहां से हट करके उसका पेट खोला तो एक थम मूसल के निकला, उसमें सांप लगा हुआ था, बबल का पेट का बना हुआ था, बड़ा मजबूत था। डर के मारे उन्होंने कृष्ण से नहीं कहा, जाकर के उग्रसेन महाराज जी को कहा, महाराज ये बातें हुई, बाप से बेटा डरता है किंतु दादू जी से नहीं डरता। पशु के पास में गए और बोले कि ऐसे ऐसी दशा हुई, सचमुच में मिशल आया, अब क्या किया जाए। दादू जी ने बड़ा भाग्य, संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे बिलक की और देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही तो दुर्गति होती है, वो देश का देश ध्वंस हो जाता है, राष्ट्र ध्वंस हो जाता है। आजकल साधुओं का, गौओं का, ये सब सत्यता का, धर्म का आदर नहीं है, इसलिए हमारे राष्ट्र की ये दुर्गति है। आज यदि ऐसा होता, गायों का आदर होता, संत महापुरुषों का आदर होता, भागवत का आदर होता, सच्चे जो ब्राह्मण है, सच्चे जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, भक्तों का आदर होता, तो ये हमारे दस देश की दुर्गति। अभी तक जो बचा हुआ है देश में, बहुत से भक्त हैं इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो ये कभी का सत्यानाश इसका हो जाता। और जब तक ये रहेंगे तब तक ध्वंस नहीं होने देंगे, किसी प्रकार से ये सत्य छाया में उसे बचा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उस सांप को जला दिया, जलाने के बाद लोहा वाला अंश रह गया, लोहे वाले को रगड़वाया और रगाड़ करके एकदम चूर्ण बिचूर्ण कर दिया, थोड़ा सा जो हाथ में जो अब नहीं आ रहा था वही थोड़ा सा बच गया, उसको एक कागज की पुड़िये में राख समेत, भस्म समेत और चूर्ण समेत लेकर के नौका पर बैठ करके समुद्र में बिचूर्ण जाकर, वहां से समुद्र की लहरी निकली और भस्म और वो लोहे के जो चूर्ण थे उसको लेते हुए आई और लेकर के किनारे पर डाल दिया। वहाँ पर सरकंडे का बिना गांठ का एक होता है समुद्र के किनारे या ब्रिज में भी होते हैं, एर का जिसको कहते हैं, एर का, वो उसके पत्ते एकदम तलवार की धार की तरफ में, वो सब वहाँ पर हो गया। और जो छोटा सा चूर्ण था एक मछली उसे निकल गई और वो पकड़ी गई जाल में, मल्लाह ने उसे पकड़ा, देखा जिस पेट में है बड़ा चमकीला सा है, उसने बाढ़ के ऊपर में बह दिया। और कुछ दिनों के बाद में वहां पर बड़े अशगुन होने लगे, भयंकर आंधी उठने लगी, कई रक्त की वर्षा होती, कुत्ते बड़े जोर से रोने लगते, इस तरह से बड़ा अशगुन होने लगा। कृष्ण ने कहा, एक बात करो, पिंडारक से उसमें चलो वहाँ हम दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, तीर्थ में हमारा ये सब अशुभ जो कुछ आने वाला है वो सब लोगों को लेकर के बूढ़ों को बड़ों को रख दिया वहाँ, स्त्रियों महिलाओं को भी रख दिया और बूढ़ों सबको लेकर के वहाँ पिंडार तीर्थ में गए जिसको आज सोमनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है उस जगह, और वहाँ जा करके स्नान किया, दान पुण्य किया, सबको प्रचुर दान दिया गया। ध्यान देने के बाद में वो और बलदेव जी प्रभु वहाँ से थोड़े से हट करके अलग हो गए और वहाँ पर और बाकी जो थे वो लोग मधुपान कर और परस्पर गाली गलौज लड़ने लगे और एक दूसरे को वही मुंज उखाड़ कर दिया, कट फट करके सब खत्म। बलदेव जी ध्यान लगाया और वहाँ से निकल करके चले गए। कृष्ण बैठे थे एक पेड़ के नीचे, वहीं पर उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि जी आए, उनको ज्ञान का उपदेश दिया जो भागवत के दर्शन स्कंद में थे, एकादश और द्वादश जी ने वर्णन किया। दत्तात्रेय जी का आज दत्तात्रेय जी का शायद जन्म दिवस भी है, दत्तात्रेय जी का उपाख्यान सुनाया, ये सब ज्ञान उनको दिए और उद्धव का आदेश दिया कि हमारे जाने के बाद तुम यहाँ से जाना, ब्रज होकर के तुम हिमालय पर बद्रिकाश्रम में जाना और इस सब का ये जितना है विदुर को बतलाना और इसके बाद मैत्री जी। वो तो रोने लगे तो भी उनका आदेश तो मानना ही पड़ा। इसके बाद में अब यहाँ पर ये देखने की बात है जो कृष्ण के साथ में इतने दिनों तक रहे उनके जो परिकर वो लड़ मार करके मर मिटेंगे कि नहीं, तो ये क्या हुआ? हुआ जो कृष्ण की लीला का अंतिम समय हो गया, वो जाना है, सब लोग तो बैकुंठ में वो लोग वृंदावन में जाएंगे और असुर लोग मारे गए वो तो इस जगत में रहेंगे या उनकी मुक्ति हो गई, किंतु बाकी जो भगवान के परिकर थे जैसे शांत प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, बलदेव जी हैं और उनके परिकर हैं, उनकी रानियां हैं, ये भगवान के नित्य परिकर लक्ष्मी हैं और वो लोग भगवान के नित्य साक्षी पार्षद हैं, उनको तो लड़ करके मरेंगे नहीं, किंतु यहाँ दिखलाया गया यूं। सब लोगों ने देखा ब्रह्मा और शंकर ने कि कृष्ण अपने स्वस्थ शरीर से जा रहे हैं, शंकर ब्रह्मा इत्यादि देवता जितने देवता थे हाथ जोड़ करके उनको स्तव स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनको बाण लग गया और मर गए। योग माया ने वहां पर एक दृश्य ये योग माया का कारण ऐसा दिखाई पड़ा कि कृष्ण को बाण लग गया और सब लोग लड़ कर करके मिले, न लड़कते न युद्ध हुआ न कृष्ण को बाण लगा, कैसे हुआ इसका एक उपमा दे करके बतला दे। कैसे हुआ इसको बतलाते हैं जरा ठीक है, इसलिए आप लोग सभी भी यही प्रार्थना की हमारी बाल टोल में है कृष्ण चले आओ। एक राजा थे उनकी रानी थी, एक दिन वो राजसभा में बैठे, एक मदारी आया, मदारी के साथ में उसकी पत्नी भी थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। मदारी की जो पत्नी थी उसकी 16-17 वर्ष की उसकी थी, मदारी भी ऐसे ही 18-20 वर्ष का युवक था, छोटी किशोर उसके लड़के थे, आकर के बोले कि महाराज हम कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ठीक है दिखलाओ, सब लोग बैठ गए राज्यसभा, सब लोग दो बांस पोल खड़े कर दिए, उस पर एक रस्सी टांग दी, उसके इसी एक घड़े पर खड़ा, उसके ऊपर में तीसरा घड़ा और एक बांस लेकर के सक 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 उसके ऊपर निकली गई और बैलेंस साधे हुए घर से घर में नाच रही है, कभी ऐसे कभी है नाचती है किंतु गिरती नहीं है, एकदम पतली सी रस्सी। सबको अब बड़ा आश्चर्य हुआ, रानी ने आगे बढ़ करके जब वो उतरी, रानी ने अपने गले का नौलखा हार उसकी बजी तो कमाल था, खड़ा भी नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, पैर भी नहीं खींच रहा, तुम रस्सी पर इस प्रकार से नाचा और फिर इधर से जाती है उधर से फिर लौट करके इधर आती है उधर से जाती है, कभी झुकती है कभी खड़ी होती है, कभी जब हार पहना दिया तो उसके बगल में जो लड़के थे दोनों, मैया ये मैं लूँगा, मैं ये लूँगा, वो हार को उन्होंने खींचना आरम्भ किया, मैया ने उस हार को निकाल करके गले से और छोड़ दिया बीच में और दोनों खींचने लगे, दोनों अभी बहुत छोटे अभी किशोर 4-5 वर्ष के या 6 वर्ष के होंगे, बड़े सुंदर दुकान से दिव्य चेहरा तलवार वहाँ पर रखी थी ऐसे लगाए हुए, जब खींचने में दोनों बराबर पर चल रहे थे कोई खींच नहीं सका तो उन्होंने एक हाथ से उन्होंने तलवार उठाई तो उसने भी तलवार उठाई और एक साथ दोनों ने वार किया, दोनों लड़के का गर्दन कट गया। वो अब वो जो उसकी मैया थी, अरे जब बेटे ही नहीं गए तो अब फिर क्या, बस एक बेटे का उन्होंने तलवार उठाया और उन्होंने अपना गला भी काट दिया। इतने में उसके पिता ने देखा जो अपने कि अरे ये हमारे तीनों कट गए तो उसने भी तलवार उठाई और ऐसे एक मिनट के अंदर में सेकंड के अंदर में ऐसा हुआ जो कोई धारण नहीं कर सकता था, सीखने लगे सब। रानी तो दौड़ी बचाने के लिए, किंतु उससे पहले ही ये सब समा बड़ी शो करने लगी, ये तो खेल नहीं, ये तो जान की हत्याएं चारों की हो गई, लाशें हटा दी गया, हटा दी गई, तो ये लोग राजन रात भर यही सोच करे किसी को नहीं देने, आज तो यहाँ चार चार देखते हैं। दूसरे दिन रानी के नाम से और राजा के नाम से एक पत्र आया, महाराज हमने कल जो खेल दिखलाया पहला उसका तो हमें इनाम मिल चुका और दूसरे जो खेल हमने दिखलाई उसका तो कोई पुरस्कार नहीं मिला, ये तो खेलता हमने किसी को मारा नहीं, हमारे बेटे और मेरी पत्नी और मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ, आप आ जाइए, हमारा ये पता है, आपके महल के पीछे ही हम लोग रहते हैं। उनको बड़ा कौतूहल हुआ, उन्होंने अपने सेनापति को और सब लोगों को राजसभाओं को लेकर के और अपनी पत्नी को भी ले लिया और जहाँ एड्रेस लिखा था वहाँ गए। जब ही वहाँ पर दरवाजे पर पहुँचे मुस्कुराती हुई उसकी पत्नी और वो दोनों और बेटे उनके पास में खड़े होकर के वही हार उसकी पत्नी के गले में झूल रहा और वो वैसे के तैसे वो चारों मुस्कुराते हुए उनको मिले उनके गले में हार था। महाराज हमारा वो इनाम कहाँ है जो जिससे लिखा है, ये खेल जिसको कहते हैं इंद्रजाल, हमने देखा है ऐसा मथुरा में कोई बंगाल से भिक्षु आया या कोई आया उसने अपने लड़के की गर्दन काट दी और अपने हाथों से उसे ताला दस ताला लगा दिया और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट को कहा कि आप ताला खोलिए देखिए तो हमारा बेटा आता है कि नहीं, उसी में उसका गर्दन काट करके और उसका धड़ सब उसमें बंद कर दिया और पूरा बेटा 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 किशोरी माँ निधर आ जा बेटा पिताजी मैं आ रहा हूँ, ये कहते सभा के बाहर से उसका बेटा काट करके सबके सामने काटा, उस बॉक्स में बंद कर दिया, ताला भी लगाया और वहाँ पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग खड़े थे। आश्चर्य की बात वो लड़का वह बाहर से कैसे हुआ, कलकत्ते में एक और बात हमने सुनी है, वही बीसी रॉय एक दिन अपना जादू का खेल दिखलाएगा वहाँ का कमिश्नर अंग्रेज और वहाँ के बड़े बड़े फोर्ट विलियम में वहाँ के मैदान में एक खेल दिखाने का लिए शो हुआ, उसमें इसको जाना था 4 बजे और जितने बड़े बड़े जितने वहाँ पर थे गवर्नर से लेकर के बड़े बड़े वो सब लोग वहाँ पर उपस्थित हो गए ठीक 4 बजे, ये 4 बज गया, 4:15 बज गया, 4:30 बज गया, 4:45 बजा, 5 बजा, 5 की बात हुआ, बड़े मजे से मुस्कुराता हुआ वो सभा में पहुंचा, सब लोग उसको बड़े बिगड़े तुम मां पान खाता हुआ मुस्कुराता हुआ आ रहा है और हम लोग 1 घंटे से हमारा बर्बाद हुआ, अभी तुमको हम दंड देते हैं, तुम खेल दिखाएगा भाई, हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं, हम तो ठीक समय पर आए हैं, आप अपनी घड़ी देखिए तो सब लोग सब गोलों देखा कि ठीक 4 बजे हमारे ऊपर में किस लिए कोशिश, یہ میرا پہلا حضور، یہ پہلا کھیلا ہے. تو جب ایک مداری، ایک انتظار کرنے والا جادوگر جب ایسا کر سکتا ہے، تو بھگوان جو سب جادوگروں کے معلوم جو وشو برہمنڈ کا سرشٹی کرنے والے ہیں، اپنی جوگ مایا سے ایسا کیوں نہیں دکھلا سکتے؟ جو لڑ کر سے مٹے مرے، کوئی نہیں مرا. یہ اندر، یہ مایا مایا کا لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھگوان جب ایسے آتے ہیں تو کسی کے درد سے آتے ہیں، اور کبھی جاتے سمے میں ایسی لیلاؤں کو کر جاتے ہیں. مورخ لوگ ونچت رہ جاتے ہیں، سادھو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بھگوان کا یہ لیلا کیسے دکھلا سکتے ہیں. اصل میں بھگوان نہیں مرے، ان کو نہ تو باندھ لگا، نہ تو وہ لڑائی ہوئی، نہ مار کاٹ ہوئی، نہ کچھ. وہ اندرجال دھام آیا تھا، اور پریشت مہاراج جی کو جو سانپ کاٹا یہ بھی اندرجال جوگ مایا نے بنایا. اس لیے ایسا مت سوچنا جب پریشت مہاراج جی کو سانپ کاٹا وہ مر گئے، اور کرشن جی کو سانپ دھنس بان لگ گیا، بہریا کا ابھی سمباد لگ گیا، ان کے بھکتوں کو ہی ابھی